रूद ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। निक्स की दिखाई हुई यादें अब भी उसकी नसों में धड़क रही थी। गुफा, आग, चीखें, अधूरी छाया, सब कुछ अभी भी उसके भीतर जीवित था। तेखाने के सामने खड़ा वो कुछ पल स्थिर रहा, फिर अचानक उसका शरीर बिजली की तरह हरकत में आया। वो मुड़ा और अगले ही क्षण उसकी आकृति धुंधली हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि अगर कोई सामान्य इंसान वहां होता तो उसे सिर्फ हवा का तेज झोंका महसूस होता। रात गहरी थी। काली पहाड़ी सोसाइटी के बाहर बना छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर टिमटिमाती एक मध्यम पीली बल्ब की रोशनी बस इतना दिखा रही थी कि वहां महादेव का शिवलिंग स्थापित है। इस समय मंदिर में कोई नहीं आता, रात के उस पहर तो बिल्कुल भी नहीं। रूद सीधा मंदिर के प्रांगण में उतरा। उसके जूतों की आहट तक पत्थर ने अपने भीतर सोख ली। वह शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। माफ करना, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा। फिर उसने दोनों हाथ शिवलिंग के चारों ओर फैलाए। सामान्य आंखों को वह पत्थर एक टन से कम नहीं लगता, विशाल, ठोस, अधिक, पर रूद के लिए वह बस एक अवरोध था। उसकी बाहों में बैंगनी आभा लहराई, नसें उभर आईं, जमीन हल्की सी कांपी। और अगले ही क्षण वह भारी शिवलिंग ऐसे उठा लिया गया जैसे वह किसी बच्चे का खिलौना हो। रूद ने उसे बगल में सावधानी से रखा। नीचे पत्थर की चबूतरी में एक चौकोर जगह बनी हुई थी। वहां धूल जमी थी, पर उसके बीच में एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा था। पुराना, जंग लगा, पर उसके चारों कोनों पर सूखे लाल धब्बे थे। रूद झुका, उसने बक्सा उठाया। उसी क्षण उसकी हथेली में हल्की जलन हुई, मानो बक्सा उसकी पहचान पर रख रहा हो। पर उसने हाथ नहीं छोड़ा। कुछ पल बाद वह फिर शिवलिंग को उसी जगह पर स्थापित कर चुका था। ऐसा लगा ही नहीं कि उसे कभी हटाया गया था। और फिर वह फिर से धुंध की तरह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद वह फिर तेखाने के सामने था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। तेखाने के सामने लोहे के उस मुहर जैसे दरवाजे के पास दो आकृतियां खड़ी थीं। ईसा और डायरेक्टर भी दोनों शांत, स्थिर, जैसे वे पहले से उसका इंतजार कर रहे हों। रूद की चाल धीमी हुई। ईसा की आंखों में हल्की बेचैनी थी, पर डायरेक्टर व का चेहरा हमेशा की तरह निर्विकार। डायरेक्टर वी ने उसकी ओर देखा। रुद्र, उसकी आवाज गहरी और नियंत्रित थी, तुम्हें पता है इसमें क्या है? रुद्र ने बक्से को कसकर पकड़ा। नहीं, उसने बिना झिझक कहा, पर मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। और आपको क्या लगता है, क्या ये और लड़कियों को नहीं उठाएगा? क्या ये फिर से बलि नहीं लेगा? और क्या उन लड़कियों को कभी न्याय नहीं मिलेगा? उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, संकल्प था। इस चीज का इलाज जड़ से करना जरूरी है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर डायरेक्टर व ने सीधा सवाल किया, क्या तुम इसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हो? रूद ने बिना एक सेकंड गनवाए जवाब दिया, हाँ, न कोई हिचक, न कोई डर। ईसा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ बदला, मानो वह रूद को नए रूप में देख रही हो। डायरेक्टर व ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर दोनों उसके रास्ते से हट गए, इतनी सहजता से जैसे उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की ही न हो। रूद्र को यह अजीब लगा, बहुत अजीब, पर उसने उस विचार को झटक दिया। अभी उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसकी हथेली में पकड़ी चाबी अचानक जलने लगी। वो चमक उठी, खून के गाढ़े लाल रंग में, और उसी क्षण जो ताला वह पहले तोड़ चुका था, उसके टूटे हुए टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। वे भी चमकने लगे, लाल, मानो उनमें फिर से जान आ गई हो। रूद्र रुक गया, उसकी सांस भारी हो गई। टूटे हुए टुकड़े धीरे धीरे कांपने लगे, फिर वे हवा में उठ गए जैसे अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहे हों। वे दरवाजे के सामने जाकर मंडराने लगे। एक एक टुकड़ा अपने सही स्थान पर जुड़ने लगा। धातु की खंकती आवाजें तेखाने में गूंज उठी। टुकड़े आपस में चिपके, दरारें भर गईं, जंग गायब हो गई। कुछ ही सेकंड में वहां एक नया ताला लटक रहा था, ठीक वैसा ही जैसा रूद ने पहली बार देखा था। मानो उसने उसे कभी तोड़ा ही न हो। रूद की उंगलियां साइद के हत्थे पर कस गईं। ये खुद को पुनर्जीवित कर रहा है, उसने बुदबुदाया। दरवाजे पर उकेरे गए प्रतीक अब लाल रोशनी से धधक रहे थे। तेखाने के भीतर से धड़कन की आवाज तेज हो गई, धक धक धक, जैसे किसी विशाल हृदय की धड़कन, और उसी के साथ एक धीमी हंसी, गहरी, गुफा जैसी। रूद ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी छाया दरवाजे को छुई, ताला खुद ब खुद हिलने लगा। चाबी उसकी मुट्ठी में कांप रही थी। लाल रोशनी और गहरी हो गई। ईसा और डायरेक्टर व पीछे खड़े सब देख रहे थे, वे दखल नहीं दे रहे थे। डायरेक्टर व ने ईसा की ओर देखा और हल्के से ना में सिर हिलाया। ईसा ने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे से इशारा किया, क्या ये कोई परीक्षा थी? डायरेक्टर व ने उसकी ओर देखा भी नहीं, मानो उसका सवाल हवा में ही खो गया हो, या शायद कुछ और। रूद ने गहरी सांस ली। उसने चाबी को ताले की ओर बढ़ाया। जैसे ही चाबी पास पहुंची, ताले से खून की पतली धार टपकी और पूरी हवा में लोहे और रक्त की गंध भर गई। तहखाना अब सिर्फ एक कमरा नहीं था, वो एक जीवित मुहर थी और वह उसे चुनौती दे रहा था। अंडरस्को रूद्र ने अपनी सांसों को स्थिर किया। लाल चमकती चाबी अब भी उसकी मुट्ठी में धड़क रही थी, जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित धमनियां रखती चीज हो। उसने उसे ताले में डाला। क्षण भर के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर ताले के भीतर से धातु घिसने की आवाज आई, धीमी, गहरी और अस्वाभाविक। ऐसा लगा मानो कोई पुराना यंत्र नहीं बल्कि कोई जीव अपने दांत बींझ रहा हो। दरवाजे पर उकेरे गए मंत्र एक एक करके बुझने लगे। लाल रोशनी पहले टिमटिमाई, फिर स्याह अंधेरे में समा गई। रूद्र ने हल्का सा धक्का दिया। इस बार जब उसने साइद उठाकर दरवाजे पर वार किया तो लोहे से टकराने की कर्कश आवाज नहीं आई, कोई चिंगारी नहीं उड़ी, बल्कि दरवाजा भीतर की ओर धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी कुंडियां कराह उठी, जैसे सदियों से बंद कोई चीज पहली बार सांस ले रही हो। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों को निगल ले। रूद्र कुछ क्षण चौखट पर खड़ा रहा। बाहर की हल्की रोशनी भीतर प्रवेश करते ही जैसे मर गई। भीतर इतना गाढ़ा साया था कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी अपनी उंगलियां दिखाई न दें। एक सड़ी हुई गंध उसके चेहरे से टकराई, तेज, घुटन भरी। ऐसी बदबू जैसे खून, नमी और सड़न ने मिलकर वर्षों तक इस जगह को अपना घर बना लिया हो। रूद्र ने एक कदम अंदर रखा, फर्श पर उसका जूता पड़ा और हल्की चिपचिपी आवाज आए। उसने नीचे देखा, जमीन पूरी तरह काली थी, सिर्फ धूल या सीलन से नहीं। वो काला रंग गहरा था, अस्वाभाविक, मानो अनगिनत बार इस फर्श पर खून बहा हो, बार बार बहा हो, बार बार सुखाया गया हो, और समय के साथ वह लाल रंग स्याही की तरह काला पड़ गया हो। कमरे की दीवारों पर खरोंचे थी, कुछ जगहों पर नाखूनों के निशान, कुछ जगहों पर उंगलियों से खींची गई रेखाएं, जैसे किसी ने आखिरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की हो। रूद्र आगे बढ़ा और तब उसने उन्हें देखा, फर्श पर बिखरी हड्डियां, छोटी छोटी, पतली, नाजुक, कुछ पर अब भी कब्जों के चितड़े लटके हुए थे। लड़कियों के कपड़े, गुलाबी फ्रॉक का आधा हिस्सा, नीली सलवार का फटा दुपट्टा, एक कलाई पर जंग लगा हुआ छोटा सा कंगन जो अब सिर्फ हड्डी के ढांचे पर लटका था। कमरे के कोनों में कंकाल पड़े थे, कुछ ऐसे जैसे वे भागते भागते गिर गए हों। कुछ दीवार से सटे बैठे हुए, सिर झुका हुआ, मानो आखिरी पल तक उम्मीद कर रहे हों कि कोई दरवाजा खुलेगा। और कुछ अजीब तरह से उल्टे लटके हुए, हड्डियों के ढांचे छत से जंजीरों में उलझे हुए, उनके कपड़े नीचे की ओर झूल रहे थे, जैसे किसी विकृत अनुष्ठान के हिस्से रहे हों। रूद्र की सांस भारी हो गई, उसकी छाती में कुछ कसने लगा, उसकी उंगलियां साइद के हत्थे पर जमी रहीं, पर उसकी आंखें चारों ओर घूमती रहीं। इतनी जिंदगियां, इतनी चीखें, इतनी असहाय मौतें, उसके कदम धीमे पड़ गए। फिर उसकी आंखों से दो बूंदें फिसल गईं, आंसू, वे काली जमीन पर गिरे। जहां वे गिरे वहां की सतह हल्की सी धुआं देने लगी, जैसे उस पवित्र दर्द को ये शापित जमीन स्वीकार नहीं कर पा रही हो। और तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, कोमल, परिचित, रुद्र, मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। वह स्मृति बिजली की तरह उसके भीतर कौन थी, एक धूप से भरा दिन, मुस्कुराता चेहरा, आंखों में स्नेह, और फिर खालीपन। रुद्र की सांस टूट गई, उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के लिए वह इस अंधेरे कमरे में नहीं, अपने अतीत में खड़ा था। वह वादा जो वह निभा नहीं पाया, वह व्यक्ति जिसे वह बचा नहीं पाया। उसकी पलकों के नीचे दर्द सुलगने लगा, फिर उसने आंखें खोलीं, और इस बार उनकी पुतलियां सामान्य नहीं थीं, वे धीरे धीरे लाल होने लगीं, पहले किनारों से, फिर पूरा नेत्र गहरे रक्तिम रंग में डूब गया। उसके चारों ओर बैंगनी आभा घूमने लगी, पर इस बार उसमें एक तीखी लाली घुली हुई थी। उसकी पकड़ साइड पर और कस गई, हथेली की नसें उभर आईं। कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे अंधेरा भी उसके क्रोध को पहचान गया हो। वो अब सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो अब एक गवाह नहीं था, वो अब न्याय था। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब कोई और नहीं मरेगा। कमरे के सबसे गहरे कोने से कुछ हलचल हुई, अंधेरे में दो विशाल हरी चमकती आंखें खुलीं, और सड़न की गंध अचानक और तीखी हो गई। रूद्र ने अपना कदम आगे बढ़ाया, इस बार उसके भीतर आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। अंडरस्कोर रूद्र ने जैसे ही अपने कदम और भीतर बढ़ाए, अंधेरे ने मानो उसके लिए परतें खोलनी शुरू कर दी। अब जो दृश्य सामने था वह पहले से कहीं अधिक भयावह था। छत से दर्जनों कंकाल लटक रहे थे, कुछ के पैरों में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं, कुछ को रस्सियों से उल्टा टांगा गया था, जैसे वे कोई निर्जीव वस्तु हों। कई कंकाल आधे सड़ चुके कब्जों में थे, सलवारें, फ्रॉक, स्कर्ट, दुपट्टे, जो अब धूल और समय के साथ चिपक कर उनके ढांचों से लिप गए थे। हवा में झूलते हुए वे धीरे धीरे टकरा रहे थे, हड्डियों की टकराहट की सूखी खनक कमरे में गूंज रही थी। रूद्र की सांस अटक गई, फिर उसकी नजर सामने पड़ी, वह बाकी सबसे अलग थी। एक लाश उल्टी लटकी हुई, पर उसके कपड़े बाकी कंकालों जैसे पुराने नहीं थे। वे आधुनिक थे, जीन्स, हल्का नीला टॉप जिस पर अभी भी फीका पड़ा हुआ एक छोटा सा प्रिंट दिख रहा था। शरीर लगभग सूख चुका था, त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। चेहरा पहचान में आने लायक मुश्किल से बचा था, पर कपड़े वही कपड़े थे। रूद के पैरों में अचानक कंपन दौड़ गया, उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसने एक कदम पीछे लिया, उसकी आंखें फैल गईं। वो उन कपड़ों को पहचानता था, क्योंकि 2 साल पहले जब रामू काका थाने के बाहर रोते हुए खड़े थे, उन्होंने उसी ड्रेस का जिक्र किया था। मेरी बेटी ने नीला टॉप पहना था साहब, जीन्स भी। वह आवाज रूद के कानों में गूंज गई। उसके सामने अब कोई अनजान पीड़िता नहीं थी, वह रामू काका की बेटी थी जिसकी तलाश 2 साल तक चली, जिसके लिए पोस्टर लगे, जिसके लिए रातें काटी गईं, और जो अब यहां थी, उल्टी लटकी हुई, भुला दी गई। रूद के भीतर कुछ टूट गया, उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी, उसका शरीर कांपने लगा। साइद की पकड़ ढीली पड़ गई। मैं देर से आया, उसके होंठ बुदबुदाए। वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। उसी क्षण कमरे की छत चरमराई, ऊपर की चट्टानें दरार लेने लगीं, नुकीले पत्थर ढीले होकर नीचे गिरने लगे। पहला पत्थर रूद के कंधे से कुछ इंच दूर गिरा, दूसरा उसके पास फर्श में धंस गया, पर वह हिला नहीं। वो बस ऊपर देखता रहा, मानो उसे परवाह ही नहीं, जैसे ये सब खत्म हो जाना ही बेहतर हो। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुद्र, ईसा और डायरेक्टर व देखाने के मुहाने पर खड़े थे, उन्होंने पूरा दृश्य देख लिया था। डायरेक्टर व की आंखें क्षणभर के लिए गंभीर हो गईं, उन्होंने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ तेज गूढ़ मंत्र उच्चारित किए। उनकी हथेली से नीली रोशनी निकली, वह रोशनी हवा में लहराकर एक चमकती रस्सी में बदल गई। रस्सी सांप की तरह आगे बढ़ी और रूद की कमर के चारों ओर लिपट गई। उसी पल एक विशाल पत्थर ठीक उस जगह गिरा जहां वह खड़ा था। डायरेक्टर व ने जोर से रस्सी खींची, रूद का शरीर हवा में झटका खाकर पीछे खींचाया। पत्थर जमीन पर गिरते ही धमाका हुआ, धूल और मलबा चारों ओर फैल गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। रूद जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं, वो मूर्ति की तरह जड़ हो चुका था। साइद उसके हाथ से ढीली लटक रही थी, उसके चेहरे पर न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ एक गहरा खामोश सदमा, मानो उसने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो दी हो। ईसा ने उसे ऐसे देखा, उसके भीतर कुछ खौल उठा, वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। रूद ने ऊपर देखा भी नहीं, अचानक चटाक, पहला थप्पड़, उसका चेहरा एक ओर झुक गया, चटाक, दूसरा थप्पड़, इस बार उसकी गर्दन झटका खाकर दूसरी ओर मुड़ी। अरे नमूने, ईसा की आवाज गूंजी, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब क्या हुआ, हवा निकल गई? रूद चुप रहा, ईसा झुककर उसकी कॉलर पकड़ लेती है। तू कह रहा था जड़ से खत्म करूंगा, जान दांव पर लगा दूंगा, अब एक लाश देखकर बैठ गया? उसकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे चिंता भी थी। वो 2 साल पहले मर चुकी है, ईसा चीख पड़ी, उसकी आवाज में बेबसी और गुस्सा दोनों घुल गए थे। तू उसे अब नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तू यहीं जड़ बनकर बैठा रहा तो जो बाकी लोग फंसेंगे उन्हें भी नहीं बचा पाएगा। रुद्र की पलकें कांपी, उसके भीतर कुछ हिला, डायरेक्टर व चुपचाप खड़े थे, वे दखल नहीं दे रहे थे, ये क्षण जरूरी था। ईसा ने उसे झकझोरा, हीरो बनने आया था ना, तो उठ, क्योंकि ये जगह तेरी कमजोरी से नहीं टूटेगी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रूद की उंगलियां फिर से साइड पर कस गईं। उसकी सांस गहरी हुई, उसकी आंखों में फिर से लाल चमक लौटी, पर इस बार वो अंधा गुस्सा नहीं था, वह ठंडा संकल्प था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसने एक आखिरी बार ऊपर लटकी रामू काका की बेटी की लाश की ओर देखा। मैं देर से आया, उसने बहुत धीमे कहा, पर अब कोई और देर नहीं होगी। कमरे के सबसे अंधेरे कोने से फिर वही हरी आंखें चमकी, इस बार रूद पीछे नहीं हटेगा, अंडस्को। तभी पूरे कमरे में एक साथ शैतानी हंसी गूंज उठी, वो एक दिशा से नहीं आ रही थी, चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से, दीवारों के भीतर से, लटकते कंकालों के बीच से। हा 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 हा, हंसी लंबी थी, खींची हुई, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर दर्द में डुबोकर छोड़ा हो। हड्डियां हल्की हल्की हिलने लगीं, जंजीरें आपस में टकराईं, कमरे की काली जमीन पर दरारें रेंगने लगीं। ईसा ने तुरंत अपनी स्थिति बदली, डायरेक्टर व ने हाथ पीछे बांध लिए, पर उनकी आंखें हर कोने को पड़ रही थीं। रुद्र स्थिर खड़ा था, उसकी लाल आंखें अंधेरे में छेद करने की कोशिश कर रही थीं। डर गया, आवाज फुसफुसाई, वह आवाज अब साफ थी, भारी, गहरी, जैसे कई गलों से एक साथ निकल रही हो। लटकती हुई लाश रामू काका की बेटी की अचानक झटके से हिली, उसका सूखा सिर धीरे धीरे ऊपर उठा, खाली नेत्रगह में हरी आग जल उठी। भैया, वही मासूम आवाज, पर अब उसमें विकृति थी। रुद्र का जबड़ा कस गया। मुझे छोड़कर मत जाओ। अचानक उसकी गर्दन अस्वाभाविक कोण पर मुड़ी, कड़क की आवाज आए और वही हंसी फिर फूटी। इस बार दीवारें भी कांपी, काले धुएं की लहरें फर्श से उठने लगीं। वे घूमती हुई बीच कमरे में इकट्ठी होने लगीं, धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। पहले छाया, फिर उस छाया के भीतर कई चेहरे उभरे, रोती लड़कियां, चीखते चेहरे, खाली आंखें। उसका शरीर स्थिर नहीं था, लगातार बदलता हुआ। पीठ से लंबी हड्डीनुमा भुजाएं निकली, उनके सिरे नुकीले पंजों में बदल गए। उसकी छाती के बीच एक काला गड्ढा था, मानो वहां दिल नहीं, शून्य हो। तू देर से आया, वह गर्जा, नहीं तो तुझे भी वो सब देखने को मिलता। कमरे का तापमान गिर गया। रुद्र के आसपास बैंगनी आभा फिर से घूमने लगी। दानव की हंसी अचानक तेज हो गई। अगले ही पल छत से लटके तीन कंकाल जंजीरों समेत टूटकर नीचे गिरे और जमीन पर गिरते ही जीवित कठपुतलियों की तरह खड़े हो गए। उनकी हरकतें टूटी फूटी थीं, हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ रही थीं। वे एक साथ रुद्र की ओर दौड़े। रुद्र ने साइड घुमाए, बैंगनी लहर हवा में चीरी, पहला कंकाल दो टुकड़ों में बट गया, दूसरे का सिर उड़ गया, तीसरे की जंजीर कट गई, पर वे गिरकर शांत नहीं हुए। उनके टुकड़े जमीन पर तड़पने लगे। दानव हंसा, ये मरते नहीं, ये मेरे हैं। अचानक फर्श से काले हाथ निकले, वे रुद्र के पैरों को पकड़ने लगे। ईसा ने तुरंत अपने हाथ से एक चमकती चक्राकार ऊर्जा फेंकी, दो हाथ कट गए। डायरेक्टर वन ने एक और मंत्र पढ़ा, नीली ऊर्जा दीवारों पर फैल गई, कुछ क्षण के लिए अंधेरा पीछे हटा, पर दानव अब पूरी तरह सामने था, उसकी ऊंचाई छत तक पहुंच रही थी। वह धीरे धीरे रुद्र की ओर झुका। तू सबको बचा नहीं सकता, उसने फुसफुसाया, और अचानक कमरा बदल गया। रुद्र के सामने वही पुरानी याद उभर आए, वो चेहरा, वो विदाई, मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। दानव की आवाज उसी में घुल गई, तूने उसे भी नहीं बचाया। रुद्र का सीना धड़क उठा, उसकी सांसें भारी हुई, एक क्षण के लिए उसका ध्यान डगमगाया। दानव की हड्डीनुमा भुजा बिजली की तरह आगे बढ़ी और रुद्र को सीने से टकरा गई। वो पीछे की दीवार से जा टकराया, धमाका हुआ, दीवार में दरार पड़ गई। साइद उसके हाथ से लगभग छूट गई, पर उसने कसकर पकड़ ली। खून उसकी होंठों से रिसा। दानव फिर हंसा, देखा, तू भी टूटेगा। रुद्र धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, उसने अपने होंठ से खून पोंछा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं, पर इस बार उनमें दर्द नहीं था, सिर्फ ठंडा निर्मम संकल्प। मैं सबको नहीं बचा सकता, उसने भारी आवाज में कहा, पर तुझे आज खत्म करूंगा। निक्स की ऊर्जा अचानक भड़क उठी। साइद का ब्लेड लंबा और चमकीला हो गया। कमरे की हवा घूमने लगी। दानव की हंसी पहली बार हल्की पड़ी। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, और इस बार वह शिकार नहीं था,